ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं मीनू प्रधान। आरंभ में आज के मुख्य समाचार शीर्षक। संवैधानिक निकायों की सभी रिक्त पदों की पूर्ति करने का नेकपा सचिवालय की बैठक ने सरकार से किया आग्रह। मानवीय भावना के साथ समाज सेवा करने का प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने सभी नागरिकों से किया आग्रह। आज 1356 कोरोना संक्रमण के नए मामले आए सामने। 2 संक्रमितों की हुई मौत और दुनिया भर में कोरोना से अब तक 3,15,62,000 से अधिक हुए संक्रमित। अब समाचार विस्तार से। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा ने विभिन्न संवैधानिक निकायों में रिक्त रहे पदों की पूर्ति करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आग्रह सरकार से किया है। प्रधानमंत्री निवास बालोटार में आज हुई नेकपा सचिवालय की बैठक ने प्रधानमंत्री समक्ष ये आग्रह करने का निर्णय किया है। ये जानकारी नेकपा के प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ ने दी। साथ ही बैठक ने पार्टी की सांगठनिक एकता के बाकी रहे काम को भी पूरा करने के लिए सचिवालय में आवश्यक प्रस्ताव को लाने के लिए दोनों अध्यक्षों और महासचिवालय को 10 दिनों का समय दिया गया है और इसी तरह आए प्रस्तावों पर विचार विमर्श कर आवश्यक निर्णय लिया जाएगा। ये जानकारी प्रवक्ता श्रेष्ठ ने दी। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने सभी से सकारात्मक दिशा में गतिशील होकर समाज सेवा में लगने का आग्रह किया है। 41वें सामाजिक सेवा दिवस के अवसर पर समाज कल्याण परिषद द्वारा आयोजित कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि सरकार गैर सरकारी से भी ज्यादा व्यक्तिगत ढंग से मानवीय भावना के साथ समाज सेवा करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ओली ने बताया कि सरकार ऐसे पीड़ितों की किए गए प्रतिबद्धता के अनुसार उनके उपचार का प्रबंध और जीवन बिताने के लिए आमदनी का प्रबंध करने और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इसके मद्देनजर कड़ी से कड़ी कानून लाने की तैयारी की जा रही है। मौके पर महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्री पार्वत गुरुंग ने कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास, महिला हिंसा, छावपड़ी कुप्रथा जैसे विकृतियों का अंत कर समाज को आगे बढ़ाने के लिए आगामी कार्यदिशा को जल्द ही तय किया जाएगा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने प्रेस काउंसिल नेपाल द्वारा प्रदान की जाने वाले गोपाल दास पत्रकारिता वरिष्ठ पत्रकार से, पत्रकार शंभु श्रेष्ठ और प्रेस काउंसिल आचार संहिता पुरस्कार से अमित ढकाल को नवाजा है। प्रेस काउंसिल नेपाल की 91वीं वार्षिकोत्सव अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में पुरस्कार प्रदान करते हुए राष्ट्रपति भंडारी ने जिम्मेवार पत्रकारिता, सुसूचित नागरिक और जवाबदेही सरकार के लिए लोकतंत्र को अपरिहार्य तत्व बताया। कार्यक्रम में प्रेस काउंसिल के कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठ ने काउंसिल का वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति भंडारी समक्ष प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में राष्ट्रपति भंडारी ने पालपा की तानसेन नगर पालिका द्वारा स्थापित पुष्पलाल स्मृति पुरस्कार से हिरण्यलाल भंडारी को मानित किया। नेपाल में आज 1356 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देशभर में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 66,632 हो गई है। इसी तरह कुल संक्रमितों में से 48,061 लोग वायरस के संक्रमण से मुक्त हुए हैं। कोरोना संक्रमण के कारण आज 2 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण के कारण मरने वालों की संख्या 429 पहुंची है। ये जानकारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय की नियमित प्रेस ब्रीफिंग में प्रवक्ता प्राध्यापक जाकेश्वर गौतम ने दी है। नेपाल बाम लोकतांत्रिक आंदोलन के व्यक्तित्व साहना प्रधान की 6वीं स्मृति दिवस विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर मनाया गया। साहना प्रधान प्रतिष्ठान ने आज काठमांडू में वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचंड ने 2 बड़ी पार्टियों की एकता को एक बड़ा प्रयोग बताया। अध्यक्ष प्रचंड ने कहा कि नेकपा पार्टी के अंदर के विवादों और विचार विमर्श को अलग रूप से नहीं देखा जाना चाहिए। कार्यक्रम में साहना प्रधान प्रतिष्ठान की अध्यक्ष एवं सांसद राम कुमारी छाकरी ने कहा कि नेपाल के राजनीतिक और सामाजिक रूपांतरण के आंदोलन में साहना प्रधान का योगदान अतुलनीय है। गौरतलब है कि उनका 2071 साल आश्विन 6 गते निधन हुआ था। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। समय है व्यापार विश्राम का।
सादा खाना 100 रुपया, मटन खाना 200 रुपया। ओए, मोबाइलको डाटा पनि हामीले चलाएको मेनु अनुसार महँगो र सस्तो पर्नु पर्ने होइन र?
हुन्छ नि मित्र, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, भाइबर, व्हाट्सएप जस्ता सामाजिक सञ्जालहरू मात्रै चलाउने हो भने नेपाल टेलिकममा असाध्यै सस्तो मूल्यमा सोसियल मिडिया डाटा प्याक पाइन्छ। त्यही लिने मजाले चलाउने
*14 ह्यास डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।
अब बाकी समाचार। इसी आश्विन 15 से खाड़ी देशों के लिए भी नियमित हवाई उड़ानें भरी जाएंगी। पर्यटन मंत्रालय के सचिव केदार बहादुर अधिकारी के मुताबिक इससे पहले सिर्फ चार्टर्ड उड़ान को हो रहे तीन देशों दोहा, रियाद और कुवैत के लिए अब से नियमित उड़ान भरी जाएगी। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अक्टूबर महीने में खाड़ी देशों के लिए होने वाली उड़ानों की कार्यतालिका को भी साझा किया है। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत की अर्थ समिति की आज की बैठक ने देश के आर्थिक क्षेत्रों का अध्ययन करने के लिए चार उप समितियों का गठन करने का निर्णय किया है। बैठक ने सार्वजनिक खर्च, खरीद, निवेश और राष्ट्रीय गौरव की परियोजनाओं का व्यवस्थापन संबंधी उप समिति, राजस्व चुहावट, राजस्व बकियौता और राजस्व प्रशासन उप समिति, बैंक तथा वित्तीय संस्था उप समिति तथा सार्वजनिक संस्थान अध्ययन उप समिति का गठन किया है। समिति के सभापति कृष्ण प्रसाद दाहाल के अनुसार अर्थतंत्र के विभिन्न क्षेत्रों के विषयों में अध्ययन कर सरकार को सुझाव देने के लिए उप समितियों का गठन किया गया है। पश्चिमी न्यून चापीय प्रणाली के प्रभाव से आने वाले 5 दिनों तक पुनः देश भर में बदली होने के साथ ही बारिश की संभावना है। उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी में रहे न्यून चापीय क्षेत्र उत्तर पश्चिम की ओर जाने के दौरान 5 दिनों तक नेपाल के कई स्थानों में बारिश होने के साथ ही तराई भूभाग में आंधी तूफान भी आने की संभावना है। ये जानकारी जल तथा मौसम विज्ञान विभाग के मौसमविद राजू प्रधानांग ने दी है। देश के विभिन्न स्थानों में बाढ़ और भूस्खलन से जनधन की क्षति होने के साथ ही कई स्थानों का जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। गुलमी के इस्मा गांव पालिका वार्ड नंबर 2 के हस्ती चौर में स्याला के भूस्खलन के कारण 2 व्यक्ति की मौत हो गई है। लगातार हो रही बारिश के कारण आए भूस्खलन में लापता हुए 39 वर्षीय प्रेम बहादुर कुमार और 5 वर्षीय सफल कुमार के शव को आज बरामद किया गया है। ये जानकारी सशस्त्र प्रहरी बल गुलमी के प्रहरी नायब उपरीक्षक अशोक कुमार लम्साल ने दी है। वैदेशिक रोजगारी में जाने वाले श्रमिकों को सही जानकारी और सूचना देने के उद्देश्य से वैदेशिक रोजगारी बोर्ड और रेडियो नेपाल के बीच आज समझौता किया गया है। समझौते में रेडियो नेपाल के कार्यकारी निदेशक बुद्धि बहादुर केसी और वैदेशिक रोजगार बोर्ड के कार्यकारी निदेशक राजन प्रसाद श्रेष्ठ ने हस्ताक्षर किया। समझौते के मुताबिक हर गुरुवार सुबह रेडियो नेपाल से 7 बजे के समाचार के बाद वैदेशिक रोजगार कार्यक्रम प्रसारण किया जाएगा। रेडियो नेपाल के प्रादेशिक प्रसारण केंद्र प्रदेश नंबर 2 के वर्दीवास से मैथिली भाषा का कार्यक्रम प्रसारण किया जाएगा। अब अंतर्राष्ट्रीय प्रसंग। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 3,15,62,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 2,31,69,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं, वहीं 9,70,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित देशों में अमेरिका पहले स्थान पर है, जहां 70,51,000 से अधिक लोग संक्रमित हैं, जबकि 2,04,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं भारत में 55,80,000 से अधिक लोग संक्रमित हैं, जबकि 89,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं ब्राजील में 45,60,000 से अधिक लोग संक्रमित हैं, जबकि 1,37,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27.3 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार शीर्षक एक बार फिर से। संवैधानिक निकायों के सभी रिक्त पदों की पूर्ति करने का नेकपा सचिवालय की बैठक ने सरकार से किया आग्रह। मानवीय भावना के साथ समाज सेवा करने का प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने सभी नागरिकों से किया आग्रह। आज 1356 कोरोना संक्रमण के नए मामले आए सामने, 2 संक्रमितों की हुई मौत और दुनिया भर में कोरोना से अब तक 3,15,62,000 से अधिक हुए संक्रमित। इसी के साथ हिंदी समाचार बुलेटिन से मुझे आगे दीजिए, सुनते रहिए रेडियो नेपाल। शुभ रात्रि।